कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहाँ चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था।
ओम
शांति।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा था हमने
नहीं,
लेकिन भगवान मिल गया। भगवान मिलने से पहले हम कौन थे? शूद्र, है ना? और भगवान मिला तो हम क्या बन गए? और फिर ब्राह्मण बन के क्या लक्ष्य मिला?
देवता
बनना। तो इन तीनों में अंतर क्या है? क्योंकि आज का हमारा विषय है मैं ब्राह्मण आत्मदेव। इन तीनों में अंतर क्या है? शूद्र माना नेचुरल बॉडी कॉन्शियस स्टेज, है ना? देह अभिमानी स्थिति नेचुरल। और देवता माना नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज, देही अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी स्थिति। और ब्राह्मण माना दोनों में झूलना। ब्राह्मण माना दोनों स्थितियों के बीच में झूलते रहते हैं हम, है ना? इसमें झूल रहे हैं ना हम लोग। कभी देखो तो बहुत अच्छी सोल कॉन्शियस स्टेज है, और कभी देखो तो कंप्लीट बॉडी कॉन्शियस स्टेज में। किसी को भैया ब्राह्मणों की इतना गुस्सा कर रहे हो, हाँ? तो क्या है वो उस समय कौन सी स्टेज है? कंप्लीट बॉडी कॉन्शियस स्टेज है। लेकिन अगर हम ब्राह्मण जीवन में कोई हमें देखे बहुत अच्छी से किसी से व्यवहार कर रहे, किसी को कोऑपरेट कर रहे, किसी के जीवन को अपलिफ्ट कर रहे, किसी का उपकार कर रहे, तो इसी ब्राह्मण जीवन में कोई क्या कह देगा, आप तो देवता है, कह देगा ना। तो हम इसी एक ब्राह्मण जीवन में दोनों में झूल रहे हैं, दोनों में झूला झूल रहे हैं। तो मैं ब्राह्मण आत्मदेव का मतलब मैं वो आत्मा हूं जो पहले शूद्र थी, भगवान मिला ब्राह्मण बनी और उस भगवान ने मुझे लक्ष्य दिया कि अब मुझे इस ब्राह्मण से देवता पद तक पहुंचना है। तो सोल कॉन्शियस स्टेज नेचुरल बनाना और एक जो बॉडी कॉन्शियस स्टेज शुद्र बने में हमारी नेचुरल थी, माना क्या था। देखो एक नाव होती है, कहते हैं काशी में भांग बहुत पीते हैं, तो जब भांग बनाई जाती है ना, पीने से पहले दो स्टेज से गुजरती है वो। एक भांग को पहले घोटना होता है और दूसरा भांग को चढ़ाया जाता है। घोटना तो आप समझ गए होंगे, चढ़ाना क्या होता है, एक पात्र से दूसरे पात्र में बहुत ऊंचाई से गिराना। कहते जितना ज्यादा ऊंचाई से गिराएंगे उतना उस भांग में नशा ज्यादा होता है, ऐसे कहते हैं। तो ऐसी भांग जो घोटी गई थी और चढ़ाई गई थी, दो पंडितों ने मस्त पी ली और पी लिया, और ऐसे दिन भी बीत गया, रात हो गई, चांदनी रात थी, गंगा जी के किनारे जाके पहुंच गए। चांदनी की रोशनी में नाव दिख गई, दोनों कहते हैं चलो नाव में बैठकर इस तीर से उस तीर चल पड़ते हैं। और दोनों जाके बैठ गए, थे तो भांग के नशे में, कह रहे यहाँ तो चप्पू भी है, अपन दोनों मिलके चलाएंगे, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों बैठे, चप्पू भी चलाया पर भांग के नशे में थे। रात भर चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, और क्या हुआ, सुबह भी सवेरा होने को आ गया, पाँव फट गई, शीतल बयार बहने लगी। और तब दोनों आपस में बात करते हैं, अरे चप्पू चलाते चलाते इतना परिश्रम किया, नाव तो हमारी यही खड़ी है। तो दूसरे का नशा ज्यादा ही उतर गया था, तो उसने कहा हमने लंगर कहाँ खोला है, हमने लंगर कहाँ खोला है। लंगर खोले तो इस तीर से उस तीर जाए। ऐसे ही हम भी ब्राह्मण तो बन गए, ज्ञान रोज सुन रहे हैं, रोज अमृत वेला कर रहे हैं, रोज पांच टाइम जो ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने कहा है वो करना है, भोजन ग्रहण करते समय बाबा की याद में रहकर, बाबा की दृष्टि उस भोजन को भी दृष्टि देकर फिर ग्रहण करना है। जो भी छोटे 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 नियम इस ब्राह्मण जीवन में हमें मिले हैं हम सब फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये सब करने के बाद हमें भी लगता है नाव तो, लगता है ना कई बार नाव तो वही खड़ी है अभी भी। अभी वो सोल कॉन्शियस स्टेज जो होनी चाहिए थी, और सोल कॉन्शियस स्टेज माना आत्मा के जो मूल संस्कार है सात, कौन से मूल संस्कार है, ज्ञान स्वरूप, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं, ज्ञान, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद, पवित्रता, सुख, ये सब जो हमारे संस्कार हैं, हमें तो उसका स्वरूप बन जाना चाहिए था। सोल कॉन्शियस स्टेज बनाना माना यही ना, लेकिन वो स्टेज हमारी अभी भी बनने में बाकी है, और तभी का हम दोनों में झूल रहे हैं, कभी बॉडी कॉन्शियस स्टेज में और कभी सोल कॉन्शियस स्टेज में। लेकिन अगर इसको हम गहराई से चेक, जिसको बाबा कहते हैं ना चार्ट बनाओ, अगर मैं एक दिन अपने आप को चेक करूं कि ठीक है अभी ब्राह्मण जीवन है, दोनों में झूलते झूलते मतलब पुरुषार्थ चल रहा है, तो ये दोनों में हम जिस किस में ज्यादा झूलते हैं, बॉडी कॉन्शियस स्टेट ज्यादा समय होती है या सोल कॉन्शियस स्टेट ज्यादा होती है, ये हमें चेक करना होगा। वरना फिर क्या होगा, चल तो रहे चेक और चेंज नहीं होगा जब तक, तो मन में वो जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं आ सकती है। तो आज बाबा ने बहुत सारी कथाओं को याद किया है ना, एक सत्यनारायण की कथा याद की, तीजरी की कथा याद की, और भी एक अमर कथा याद की, और एक भी कथा और आती है जिन्होंने भागवत सप्ताह कभी सुना होगा, उसमें हमारे कथावाचक लोग बड़े ही मजेदार बना के कहानी सुनाते हैं, आत्मदेव की कहानी, उसकी पत्नी धुंधली, सुनी है कभी कहानी? नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उस कहानी को सामने रखती हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि सारे रेफरेंस यहाँ के हैं, संगम युग के रेफरेंस है, लेकिन जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिलता है ना, इनका सही अर्थ समझ में नहीं आता है। लेकिन बाबा का ज्ञान समझने के बाद जब इन कहानियों को हम देखते हैं, तो हमें बहुत जल्दी समझ में आता है कि हमें लाइफ में इस ब्राह्मण जीवन में करना क्या है और क्या चेकिंग करनी है। बस एक कहानी याद रख ली और पूरा हमें याद आ जाएगा कि मुझे पुरुषार्थ क्या करना है। तो कहानी क्या है कि आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण उत्तम नगर में रहता है, और उत्तम नगर वो रहता है तुंगभद्रा नदी के निकट, उस नदी के किनारे पर ये बसा रहता है। और वो आत्मदेव बहुत ही वेद पाठी, धर्मशील, लेकिन उसकी पत्नी, उसका नाम है धुंधली। बाबा ने धुंधकारी शब्द को अभी थोड़े दिन पहले याद किया था, ये दुनिया ही धुंधकारी बन पड़ी है। इसके पहले ये शब्द मुरली में आता जरूर है, लेकिन बहुत रेयर आता है। 2 साल पहले भी आया था कि धुंधकारी बहुत परेशान करता है इस प्रकार से मुरली में, क्योंकि बाबा ने तो सारा भक्ति बहुत की है, शास्त्र पढ़े थे, तो बाबा को सारे रेफरेंस याद आते हैं, तो मुरली में बाबा बोलते हैं। तो वो कहानी की ब्राह्मण, उसका नाम आत्मदेव है और उसकी पत्नी है धुंधली, और ये बहुत ही वेद पाठी है, धर्मशील है, लेकिन पत्नी एकदम अपोजिट है, दक्ष है, घर कार्यों में सुंदर है, लेकिन आज का स्लोगन क्या था, वो परचिंतन, परदर्शन और परमत में पराकाष्ठा पर पहुंची हुई थी, एक्सट्रीम, दोनों एकदम अपोजिट। अब पति पत्नी जीवन में क्या चाहते हैं, बच्चा, उम्र हो गई है 50 की, नेचुरल है 50 की उम्र तक बच्चा नहीं होगा तो चिंता बढ़ जाती है, इसको बहुत चिंता हो जाती है, इतनी उम्र हो गई है अभी तक बच्चा नहीं है, और सुन रखा है कि पुत्र नहीं होगा तो फिर पिंडदान कौन करेगा, फिर पितरों का मोक्ष कैसे होगा, ये चिंता उसको सताती है। और एक दिन उसको लगता है, और सिर्फ इतनी चिंता नहीं सताती है, लोगों से भी उसको ताने मिलते हैं। क्या ताने मिलते हैं, कि जो निपुत्र होते हैं, निसंतान होते हैं, उनका मुंह देखना भी अच्छा नहीं होता है। तो इस प्रकार से ताने आदि सुन के भी परेशान था, कहा या तो पुत्र मिल जाए या तो जीवन की यह लीला खत्म कर दी जाए। इस सोच से चला गया वन की ओर, वन की ओर चला गया, नदी के किनारे बैठ गया, क्योंकि धूप दोपहर हो गई थी, धूप लग रही थी, प्यास लगी, तो नदी के किनारे पानी पीने चले गया, और वहीं पर उसकी भेंट हो जाती है एक योगनिष्ठ सन्यासी से, और वो योगनिष्ठ सन्यासी इसकी दयनीय स्थिति देखकर उसको पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, वो कहता है, सारी कथा सुना देता है, मुझे पुत्र चाहिए। और वो योगनिष्ठ सन्यासी कहता है कि तुम्हारी माथे की रेखा पढ़कर तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र हैं, तुम इस जन्म की बात तो छोड़ ही दो, पुत्र तो तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, इस जन्म तो क्या 7 जन्मों तक नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी रेखा पढ़ चुका हूं। लेकिन इसकी जिद है, मुझे चाहिए, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं ज्ञान लेने नहीं आया हूं, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए आया हूं। और फिर उस योग निष्ठ सन्यासी ने उसकी डिमांड को देखकर उसको एक फल दिया, अभिमंत्रित करके कि तेरा इतना ही आग्रह है तो ये फल है, पत्नी को खिला देना, लेकिन क्या करना, पत्नी को खिलाना, रख नहीं देना, खिलाना, और उसको कह देना साथ में सात्विक लाइफ स्टाइल को फॉलो करना। कौन सी लाइफ स्टाइल? सात्विक, मतलब जो कर रही थी उसका अपोजिट। खुश होकर चला गया, पत्नी को जाके सारी कहानी सुनाई, पत्नी को दिया और कहा खा लेना, खिलाया नहीं, खा लेना। और पत्नी क्या थी, जिसका नाम था धुंधुली, परमात्मा ना अपनी ही हर बात में अपनी ही अड़ाना अड़ियल थी और दुविधा वाली थी, मना एक मन हाँ करेगा और एक मन ना करेगा। पति के सामने हाँ कह दिया कि अभी पहले पूजा पाठ कर लूँ, स्नान आदि कर लूँ, फिर खाऊंगी। पति को भी बहुत अच्छा लगा कि पत्नी तो बदल चुकी है, पूजा पाठ में लग गई है तो बदल चुकी है, खा लेगी। लेकिन इसने खाया नहीं, क्योंकि एक मन हाँ कहा था और वैसे बात तड़का दी, फिर कौन खाएगा, 9 मास तक कौन पीड़ा सहेगा, कौन सात्विक लाइफ स्टाइल करेगा, उसका तो अपोजिट जीवन था ना, एकदम से बदल दूंगी अपने जीवन, उसमें कितना मजा आता है, क्योंकि उसको तो मजा आता था उसमें झगड़ा आदि करने में, किसी का अकल्याण करने में, तो खाया नहीं। लेकिन क्या करे, पतिदेव पूछेंगे ना, तो कहा उसकी एक दूसरी बहन थी मृदुली, धुंधुली की बहन थी मृदुली, उसको सारी व्यथा सुनाई, उसने कहा कोई बात नहीं, और उस मृदुली को हर साल बच्चे होते थे, पर उसके पास धन की कमी थी और इसके पास धन बहुत था, बच्चे नहीं होते थे। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चा, अभी वैसे भी मैं गर्भवती हूँ, ये वाला बच्चा मैं तुम्हारे को दे दूंगी, पति को सब छुपा देना और टाइम आने पर बता देना पुत्र हुआ है, और जो फल है वो कहाँ करूँ। तो बोले घर में आत्मदेव ने गाय भी ला के रखी थी, क्योंकि पुत्र नहीं हो रहा था तो भक्ति में बहुत कुछ बातें सुन रखी थी, गाय लाओ शायद उसको पुत्र हो जाए बच्चा, तो उसी से ही मन रमा लेना। तो गाय ला रखी थी घर में, तो पत्नी ने क्या किया, वो गाय के गोबर के कंडे के पास जाके रख दिया। और फिर बताते कहानी में, समय पाकर इस मृदुली को जो बच्चा हुआ धुंधुली को दिया और बताया हमारा बच्चा है, और धुंधुली अपना ही जैसा व्यवहार है वैसा ही तो नाम रखेगी, उसका नाम रखा धुंधुकारी। और गाय से हुआ बच्चा था वो था, हुआ पूरा हुआ है गाय का बच्चा, लेकिन दिखने में मनुष्य, सिर्फ कान उसके गाय जैसे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। अब ये हम आते हैं अपनी बातों पे, ठीक है। ये आत्मदेव जो बच्चा नहीं हुआ है, जिसके लिए वो वन में चला गया, हम भी बाबा के ज्ञान में जब चलते हैं, जो कहा ना कि लंबा समय हो जाता है, हम नियम मर्यादाओं पे चलना आरंभ कर देते हैं, लेकिन वास्तविक जो हमें उन गुणों का स्वरूप बन जाना चाहिए, वो स्वरूप हम नहीं बनते हैं, तो अंदर में मन खाता है। इतना लंबे समय से ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और गुण उतर नहीं रहे हैं, तो आजू बाजू जिनके बीच में रहते वो लोग भी तो हमें ताने मारते हैं ना, बड़े आए हैं ब्राह्मण, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, गुस्सा नहीं कर, और खुद तो देखो कितना गुस्सा करते हैं, है ना, सुनना तो पड़ता है हमें भी, क्योंकि हम डोल रहे हैं ना दोनों के बीच में, तो जब हमारा बॉडी कॉन्शियस स्टेज वाला व्यवहार देख लेते हैं तो लोग हमें भी ताने तो मार ही देते हैं। तो अंदर ही अंदर हमें भी कभी एहसास होता है कि ये क्या है, इतने समय से ब्राह्मण जीवन में चलकर कुछ परिवर्तन ही नहीं आया। तब कहा वन में चले जाना मतलब क्या हुआ, वन में चले जाने का मतलब है अंतर्मुखी हो जाना। हम क्यों समय समय पर भट्टियां रखते हैं, उसका एक अब होता है कि जो भी लौकिक दैहिक जिम्मेदारियां हैं कम से कम थोड़ा समय उसके लिए साइड हो जाए उससे और टोटली अंतर मन में जाके झांके, अपनी चेकिंग करे और उस अनुसार अपने में चेंज लेकर आए। तो कहा जब हम अंतर्मुखी होते हैं, अर्थात अंतर्मुखी होना मतलब ही देह से अपना ध्यान उठाकर आत्मा पर केंद्रित करते हैं, क्योंकि बाकी सब जिम्मेदारियां के बीच में रहते हैं तो वो करते हैं, फिर वो जिम्मेदारी खींचती है, फिर वो करते हैं, फिर वो बात याद आती है। लेकिन जब हम ऐसे भट्टियों में आते हैं तो बाकी की जिम्मेदारियों से हम टोटली फ्री हैं। तो अंतर्मुखी होना और यहाँ के वातावरण का भी सहयोग मिलता है। तो वो सहयोग जब मिलता है तो अंतर्मुखी होना आसान होता है, आत्म केंद्रित होना आसान होता है। और जब हम आत्म केंद्रित होते हैं तो अंदर जो ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप जो हमारे गुण हैं उनसे हमारा साक्षात्कार होता है। ये गुण क्या है, ज्ञान स्वरूप माना क्या, बोलो। लंबे समय से चल रहे ना ब्राह्मण जीवन में, ये ज्ञान स्वरूप होना माना क्या है। हाँ? जो कहा उसने गाय लाके रखी थी, मतलब क्या किया था, असल में गाय नहीं थी वो ज्ञान की पुस्तक के, ज्ञान के यूट्यूब, ये सब क्या कर रहे हो आजकल, कलेक्ट कर रहे हो, इसकी वेबसाइट उसकी वेबसाइट, उषा बहन की क्लासेस, शीलू बहन की क्लासेस करना है तो इसको क्लिक करना, ये सब है गाय लाके रखना अपने पास, ये सब है गाय लाके रखना। पर कहा कि गाय से भी बछड़ा नहीं हुआ उसको, तो हमारा भी वही हाल हुआ है। बहुत सारा सुन लिया, इसकी क्लास उसकी क्लास, इसका चिंतन उसका चिंतन, इसकी कमेंट्री उसकी कमेंट्री, बहुत बहुत कुछ सुन लिया है। पर वो सब सुनने का लक्ष्य क्या था, जीवन में परिवर्तन, मैं देवत्व की ओर बढ़ूं, वो था। तो तब कहा अंतर्मुखी होंगे तो मेरा जो गुण है, आत्मा के जो सात गुण है, ज्ञान स्वरूप एक ज्ञान एक गुण है, वही क्या है, वही क्या है, विवेक है। ज्ञान हमारा जो ज्ञान स्वरूप है वो हमारा विवेक है। और लौकिक में भी कहते ना, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे आपका विवेक जागृत नहीं होगा। तो सत्संग माना आत्मा का संग, सत्य तो आत्मा है ना। जब तक आप आत्म केंद्रित नहीं होंगे, आत्मा का जो एक गुण है ज्ञान स्वरूप का, वो आपका जागृत नहीं होगा, वो विवेक जागृत नहीं होगा। और जब जागृत ही नहीं होगा तो बताएगा क्या आपको, बता भी नहीं सकता ना। ये जो सात गुण है ना, ये क्या है असल में, ये सात गुण सात फाइल्स हैं। अभी देखो ये क्लास चल रही है, इसके पहले एक क्लास चली, इसके पहले और क्लासेस चली, भाई हमारे क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो क्या शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसमें शब्द रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो शब्द बोले जा रहे हैं, नहीं, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, जब हम बोलते हैं ये पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं, यहाँ पर भी पार्टिकल्स, यहाँ पर भी पार्टिकल्स, वो वाइब्रेट हो रहे हैं, एक वाइब्रेटिंग पैटर्न रेडी होता है, वो वाइब्रेटिंग पैटर्न वहाँ रिकॉर्ड होता है। देखा है ना आपने क्या रिकॉर्ड होता है? वाइब्रेटिंग पैटर्न रिकॉर्ड होता है। और वही वाइब्रेटिंग पैटर्न जब रिकॉर्ड हो गया, उसको हमने एक नाम दे दिया फाइल को। नाम क्या दे दिया? स्पीकर का नाम भी लिख दिया, टॉपिक का नाम भी लिख दिया, कि भले जब ये वाला टॉपिक की मुझे क्लैरिटी होगी, मैं इस फाइल को प्ले करूंगी और मुझे वो पुनः याद आ जाएगा, सुन लूंगी एक बार फिर से। या कुछ गीतों की रिकॉर्डिंग होती है, कुछ कमेंट्रीज की रिकॉर्डिंग होती है, तो कई गीत ऐसे होते हैं कि जिनको सुनकर बहुत शांति की फीलिंग आती है। तो जब जब मुझे लगेगा कि अभी कोई ऐसा गीत बजाओ कि शांति, तो हम क्या कहेंगे? हम उस गीत को सेव करते क्या लिख देंगे? शांति। फिर हम क्या करेंगे? भैया शांति की फीलिंग चाहिए ना, वो शांति वाली फाइल प्ले करो ना। कई गीत ऐसे होते हैं कि जिनको सुनकर पैर थिरकने आरंभ हो जाते हैं, हम भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं। तो कभी मन हो नहीं, जैसे कोई कह रहे थे गरबा करेंगे, तो उस समय कौन सा गीत बजाएंगे हम? शांति वाले बजाएंगे क्या? ऐसे ही वाले बजाएंगे ना। तो हमारे पास वो एक सेव सिस्टम जो रहता है, उसमें हम पहचान सके फटाफट कि कौन सा गीत प्ले करना है, तो हम नाम दे देते हैं उनको, ताकि जरूरत पड़े उस नाम को पढ़ा और वहां पे जाके क्लिक कर दिया। और कुछ गीत कहो या कुछ लेक्चर कहो कि जिसको सुना तो जो बातें कई बार मुझे एहसास नहीं था, वो सुन के मुझे पता चला, जिसको बोलते ज्ञान हुआ, मुझे बोध हुआ, मेरी तो आंखें खुल गई कि मैं कितने अज्ञान के अंधकार में थी। तो वो वाली ज्ञान वाली फाइल बजाई और सुनती गई और मुझे बोध होने लगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाह रही हूं, ये जो हमारे सात गुण है, ये क्या है? सात गुण, ये सात फाइल है। और ये सात फाइल क्या है? ये सात अलग अलग वाइब्रेटिंग पैटर्न है। ये सात अलग अलग वाइब्रेटिंग पैटर्न्स हैं। जिसे आत्मा को कहते क्या है हम? आत्मा एक ऊर्जा है, और ऊर्जा का काम क्या होता है? वाइब्रेट होना ही तो ऊर्जा का स्वभाव है। और जब हम कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव है शांति, प्रेम, खुशी, जो सात गुण है, इसका मतलब आत्मा जो ऊर्जा है, जिसका स्वभाव है वाइब्रेट होना, वो इन सात पैटर्न में अपने आप, उसका ये स्वभाव है कि इन सात पैटर्न में वो वाइब्रेट होती है। डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप इस सात पैटर्न में वाइब्रेट होती है। अर्थात कि ये वाले पैटर्न में जब वाइब्रेट होती है तो शांति का एहसास मिलता है, एक दूसरे पैटर्न में वाइब्रेट होती है तो खुशी का एहसास होता है, एक तीसरे तरीके से वाइब्रेट होती है तो ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग आती है, उसको ही कहा विवेक। तो हम अभी अंतर्मुखी हुए ही नहीं है, आत्मा के गुणों पर अपना ध्यान टिकाया ही नहीं है, मतलब उस फाइल को प्ले ही नहीं किया है, तो अंदर की आवाज आएगी कहां से? फाइल प्ले करेंगे तो आवाज आती है ना, कानों में पड़ती है ना। अभी आंतरिक फाइलें हैं जो आंतरिक कानों से सुनेंगे, लेकिन अगर अंतर्मुखी हो तब कहा कि वो आत्मदेव वन में चला गया। नदी के किनारे का मतलब क्या है? आत्मा क्या है? एक ऊर्जा है, एक ज्योति का प्रवाह ही तो है ना। हम कहते हैं प्रकाश पुंज, तो प्रकाश की किरणें फैल रही है, उस नदी में क्या हो रहा है? पानी की लहरें निकल रही है, और इस नदी से क्या हो रहा है? प्रकाश की लहरें। तो तब कहा ये तुंग भद्रा नदी, ये किनारे, ये नगर बसा हुआ है, चाहे इसको उत्तम नगर कहो चाहे इसको अनुपम नगर कहो, इस नगर में आत्मदेव रहता है। और जब ये आत्मदेव इसके निकट पहुंचा, नदी में गया, वन में गया, अंतर्मुखी हुआ, नदी के निकट पहुंचा, आत्म केंद्रित हुआ, और योगनिष्ठ सन्यासी से मुलाकात हुई, विवेक से मुलाकात हुई, अंतरात्मा आवाज दे रही है, ज्ञान दे रही है, उसको हम सुने। क्यों मुख के मौन की आवश्यकता है, क्यों मन के मौन की आवश्यकता है? ये सपोज घर है, ये घर की दहलीज है, घर की दहलीज के इधर घर का आंतरिक हिस्सा, और ये घर की दहलीज के बाहर बाहर की दुनिया। कभी कभी हम खड़े हो जाते हैं ना घर के बरामदे में, गाड़ियां गुजरती है, लोग जाते हैं, रौनक देखते हैं ना कभी कभी, तो समझो घर की दहलीज पर आप खड़े हो। तो घर की दहलीज पर खड़े होकर आपका मुख बाहर की ओर फेस कर रहा है, तो आप बाहर आने जाने वाले लोगों को देख सकते हो, भीतर रहने वाले लोगों को नहीं देख सकते हो। आप घर की दहलीज पर बाहर खड़े होकर बाहर वाले लोगों से बात कर रहे हो, घर के अंदर से भी कोई आपको आवाज लगा रहा है, अंदर वाले की आवाज धीमी है, बाहर वाले की आवाज तेज है, आपको किसकी सुनाई पड़ेगी? अंदर वाले की। तो मन का मौन क्यों करना है? अंदर जाए आवाज, मन की आवाज कितनी है, मुख की आवाज भी कितनी है। जब ये चुप हो तो अंदर जो विवेक धीरे से बोल रहा है सुन सके ना, तभी तो सुन सकेंगे। और इसीलिए जब आप आए तो आपको कहा गया, हाँ बेशक संपूर्ण मौन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा हो सके उतना मौन धारण करें, मुख का भी और मन का भी, तभी अंतर्मुखी होंगी। मन की आवाज, मुख का मौन मना, मन की आवाज मतलब निगेटिव, मतलब देह से संबंधित। अब मन की आवाज मतलब मन पूरा चुप नहीं होगा, लेकिन चुप किससे होगा? ये बाहर की दुनिया देह और देह की इंद्रियों से संबंधित जो दुनिया की बातें हैं उनसे चुप करना, वो वाले ख्यालात बंद। तभी तो हम घर के जहां रहते हैं वहां की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साइड रख के यहाँ आए हैं ना, कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़े समय के लिए मुझे उससे फ्री रहना है, मुझे अंतर की यात्रा करना है, मुझे अंतर जगत में प्रवेश करना है। तो जब हम ये देह और देह की इंद्रियों से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी बातें हैं, उनसे अपने आप मन को रोक कर अंदर की दुनिया से संबंधित मन में संकल्प उठाएंगे, अंदर जाके केंद्रित होंगे, तो वो विवेक की आवाज सुनाई देगी, वो शांति की फाइल प्ले करेंगी, तो शांति के रूप में जो वाइब्रेटिंग पैटर्न होगा वो मुझे शांति का एहसास देगा। वो खुशी वाली फाइल को प्ले करेंगे तो खुशी की वो वाइब्रेशन होते ही मैं खुशी का अनुभव करूंगी, वो शक्ति की फाइल प्ले करेंगे तो शक्ति का अनुभव करेंगे। तो ये है अंतर्मुखी होके अपने विवेक को, अपने गुणों को जागृत करना। और तब कहा कि कहा बच्चे की तलाश थी ना उसको, दादी जानकी हमेशा क्या कहती थी, लोग मुझे पूछते हैं आपने विवाह किया है, तो मैं हाँ कहती हूँ। किससे? तो क्या कहती है दादी? शिव बाबा से। बच्चे हैं? कहती हाँ। कौन है? तो गुण ही तो हमारे बच्चे हैं, गुण ही तो हमारे बच्चे हैं ना। तो उसी की तो तलाश थी कि इतना समय से ब्राह्मण जीवन में मैं चल रहा हूँ, इतना गाय ला के रखी है, मतलब YouTube ये वो क्लासेस कैसे सब किताबें सब कलेक्ट कर लिया है, पर बच्चे अभी तक आए नहीं, गुण अभी तक जी। हाँ तो फिर उस कहानी में जैसे कहा ना कि वहां से उसको फल मिला है, तो फल क्या दिया? असल में विवेक ने डायरेक्शन दी कि जो तुम्हारी पत्नी है ना धंधुली, उसको खिलाना ये, और उसको कहना सात्विक लाइफ स्टाइल फॉलो करना। तो धुंधुली बुद्धि का मतलब क्या होता है? वो बुद्धि, धुंधुली जो पत्नी थी वो हमारी बुद्धि है, उसके ऊपर धुंध चढ़ी, आज वही था ना स्लोगन में, पर चिंतन ही तो करती थी वो, प्रदर्शन में लगी थी, परमत चलन पे चलती थी, तो सारी धूल जमी हुई थी। और ऐसी बुद्धि जिसके ऊपर धूल चढ़ी हुई हो, वो आत्मा पर कैसे ध्यान केंद्रित करेगी। तभी देखो कई बार हमारे भाई बहने यही शिकायत करते हैं कि बहन जी योग में क्या करना है, स्वयं को आत्मा रूप में कैसे देखना है। कहते ज्योति देखो, वो ज्योति मुझे दिखती नहीं है। तो अगर बुद्धि के ऊपर धूल चढ़ी है, बुद्धि को आंख कहते हैं ना हम, ये आंख पर धूल चढ़ी है तो जो चीज जैसी है वैसी दिखाई देगी। तो बुद्धि भी तो क्या है, आंख ही है ना। अब वो धुंधली बन पड़ी है, धूल चढ़ी हुई है उसके ऊपर, कहे कि खूब प्रचंतन किए जा रहे हैं, खूब प्रदर्शन किए जा रहे हैं, खूब परमत पे चल रहे हैं, तो परोपकार तो होता ही नहीं, होता क्या है अपकार। तो एक तो अपने रीति से भी धूल चढ़ा दी, फिर जिनका अपकार करेंगे उनकी जो वाइब्रेशन आएगी वो धूल वाली तो होगी, धूल वाली वाइब्रेशन भेजेंगे वो कि फ्रेश वाली भेजेंगे। तो धूल के ऊपर धूल चढ़ती गई, तो कहा बुद्धि धुंधली थी उसकी। तब उसको कहा उसको खिलाना, पर उसने गलती की, खिलाया नहीं सिर्फ दे दिया। हम भी यही गलती करते। बाबा ने जो ज्ञान दिया, हर रोज हम प्रतिदिन मुरली सुनते हैं, कापियों में नोट तो कर लेते हैं, यहां नोट नहीं हो पाता है, यहां धारण बुद्धि नहीं कर पाती है। और जब यहां धारण नहीं हो रहा है तो बुद्धि की धूल उतरी कैसे। और जब बुद्धि की धूल ही नहीं उतरी, बुद्धि सोने का बर्तन ही नहीं बनी है, बुद्धि की आंख स्वच्छ हुई ही नहीं है, तो वो ज्योति और वो ज्योति क्लियर, उसका विजुअलाइजेशन होगा कैसे, नहीं हो सकता है। और उसके लिए फिर कहा कि सात्विक लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए कहना। तो कई बार हम सात्विक लाइफ स्टाइल फॉलो करते करते भी कहीं कई बार चुक जाते हैं। कैसे चुकते हैं, कि हम प्याज लहसुन नहीं खाते तो हमें बाहर का नहीं खाना है, ठीक है, लेकिन प्याज लहसुन छोड़ के हम सब कुछ खा सकते हैं। तो दुनिया में जो बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बनती है, हम वो सीखना शुरू कर देते हैं, वो भी बनाते हैं, फिर उन्हीं जालों में हम, तो सात्विक लाइफ स्टाइल से थोड़ा क्या हो जाता है, हमारा डाउन तो हो ही जाता है ना, हमारा भी थोड़ा पिज्जा बर्गर ये वो। हाँ, आज क्या पता चला जब ये कोरोना चला, तो ये सब इम्यूनिटी डाउन करते हैं, टेस्ट जरूर देते हैं। ये तो मैंने सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल दिया, ऐसे बहुत लेवल पे, जैसे कभी समझो गुस्सा कर लिया, अंदर में विवेक ने कह भी दिया ठीक नहीं किया, फिर हम क्या करेंगे, देखा है महारथियों को भी करते हुए, हम तो अभी के आए हुए हैं और हम तो कोई ऐसी पोजीशन वाले भी नहीं, हमने किया तो कौन सी बड़ी बात है। मतलब अपने ही हाथों से अपनी ही लाइफ, सात्विक लाइफ स्टाइल का जो एक दृढ़ संकल्प लिया था उसका ग्रेड कम कर देते हैं। और तब कहा कि जब बुद्धि ने वो विवेक का डायरेक्शन फॉलो ही नहीं किया तो उसके घर में बच्चे सुख शांति कैसे आ सकते हैं, फिर उसके घर में तो धुंधुकारी ही आएगा ना। उसके घर में धुंधुकारी का मतलब क्या, हाँ उसमें बताते हैं धुंधुकारी पांच वेश्याओं के जाल में फंसा था। पांच वेश्याएं क्या होती है, ये पांच इंद्रियां, क्योंकि इन पांच इंद्रियों जो पांच ज्ञानेंद्रियां उसके माध्यम से मन जानकारियां हासिल करता है। आंख देखने के लिए है, परंतु अगर मन आंख से कनेक्टेड नहीं है तो देख नहीं पाते, नहीं होता है ना। कान सुनने के लिए, आवाज आ रही पर मेरा मन नहीं है उस तरफ, तो बोला क्या कुछ पता ही नहीं। तो मन कनेक्टेड इन पांचों इंद्रियों से, तब कहा ये धुंधुकारी पांच वेश्याओं के जाल में फंसा था, ये मन है धुंधुकारी और धुंधुली है माँ। तो जैसे हम कहते हैं ना, जैसे होंगे माँ बाप वैसे होंगे बच्चे। अब माँ धुंधुली ही ऐसी है तो बच्चा कैसा निकलेगा। और इसीलिए मन को ठीक करने से पहले बुद्धि को ठीक करना बहुत जरूरी। और इसीलिए बार बार इस भट्टी में आपने देखा होगा पवित्रता की कितनी क्लासेस मिल गई। आप कहेंगे क्यों पवित्रता ही क्यों बार बार दे रहे हैं, बट दैट इज द मेन थिंग। क्योंकि क्या भट्टी का उद्देश्य है, संस्कारों का परिवर्तन। कहां से? अपवित्र संस्कारों से पवित्र संस्कारों की ओर बढ़ना। जब कलयुगी संस्कार से दैवी संस्कार जाना, मतलब ही पतित संस्कारों को छोड़कर पावन संस्कारों को जीवन में लाना है। जब लक्ष्य ही पावन बनने का है तो उस पवित्रता की ही तो गुह्यता मालूम होनी चाहिए। और इसीलिए बार बार आपकी क्लासेस में वही घूम रहा है, पवित्रता पवित्रता पवित्रता। कि बुद्धि को पहले पवित्र करेंगे तो बुद्धि का जो बच्चा मन है वो भी सुमन हो जाएगा ना, वो भी सुमन। क्योंकि माँ ही तो डायरेक्शन देती है बच्चे को, माँ को डायरेक्शन देता है पिता, पिता से डायरेक्शन माँ को मिला और माँ ने फिर। अब विवेक से तो इसका कोई मेल जोल ही नहीं है, बुद्धि का फल तो खाया ही नहीं ना विवेक का डायरेक्शन, तो बुद्धि अंतर्मुखी नहीं हो पा रही, विवेक से कनेक्शन ही नहीं रख रही है। तो फिर तो बच्चा तो ऐसे ही आएगा ना धुंध मचाने वाला। और फिर हम ज्यादा समय क्या रहेंगे, बॉडी कॉन्शियस रहेंगे सोल कॉन्शियस रहेंगे? हम ज्यादा समय बॉडी कॉन्शियस रहेंगे। तो जो हमारा लक्ष्य है देवता माना, नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज। और अगर ज्यादा समय हम बॉडी कॉन्शियस रहते तो नेचुरल बनेगी कब फिर सोल कॉन्शियस स्टेज? नहीं बन सकती है नेचुरल फिर। और इसीलिए बार बार क्या करना है, हमें बुद्धि को मन से पहले बुद्धि को विवेक की तरफ खींचना है, अंदर की तरफ लेके जाना है, बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी होना है। तो बहुत बहुत सौभाग्यशाली है आप कि कोरोना के नाम पर भट्टियों का आयोजन हुआ और उसमें आपका भी नंबर लगा, तो आपने इसका फायदा लिया। परंतु हर बार तो नहीं आ सकते, क्या साल में सिर्फ 3 दिन ही अंतर्मुखी होना है? नहीं, यहां से जाने के बाद भी बीच बीच में हम स्वयं ही स्वयं के लिए भट्टी करें, अपने लिए ही टाइम टेबल बना के कि अब आज का ये संडे का दिन, वॉट एवर जो भी आपके हिसाब से, आज मुझे अंदर जाके अपनी चेकिंग करनी है, चेंज लाना है। ये तो एक सिर्फ सिंपल था आपका, लेकिन अब जाने के बाद ये कंटिन्यूअस अपने आप अपना प्रोग्राम बनाना है, तब जाके नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज बनेगी। और हम क्या कहते हैं, बाबा हमें 21 जन्मों का वर्षा देने आया है, सुख शांति का वर्षा 21 जन्मों के लिए। लेकिन जब हम सतयुग के जन्म और त्रेता के जन्मों को जोड़ते हैं तो वो तो 20 ही हो रहे हैं। तो फिर बाबा 21 किस लिए बोल रहा है? संगम को भी बाबा काउंट कर रहा है। और हम कहे कि संगम अभी तो पड़ा है ना, अभी तो पड़ा है ना, बना लेंगे ना एंड में, तो फिर इस जन्म का तो सुख लिया ही नहीं हमने। तो जब पहले कहते हैं ना, जो आदि सो अंत, वेल बिगन इज हाफ डन, ऐसे कहते हैं। अब देख लो हमारा वेल बिगन है कि क्या है। हाँ, चेकिंग खुद की करनी है कि मेरी बिगिनिंग वेल है। अगर बिगिनिंग ही वेल नहीं है तो हाफ डन किस भरोसे पे मैं बैठी हूं, किस भरोसे पे हम बैठे हैं कि एंड में अभी तो बहुत समय पड़ा है। और अभी तो एंड भी नजदीक आ गया है, ये हर कोई रियलाइज करना शुरू कर दिया है। बाबा को जो ज्ञान देना था बाबा ने ज्ञान देकर साक्षी का पाठ बजाना शुरू कर दिया है। क्यों साक्षी का पाठ बजाना शुरू कर दिया? बच्चे एग्जाम निकट है, प्रिपरेशन में लग जाओ, नया ज्ञान अभी कुछ नहीं सुनना है, जो सुना था उसी पर, उसकी गहराई पर उसको ही घोटो और उसको पियो, अपनी घोट तो नशा चढ़े, उसी को घोटो। प्रिपरेशन के टाइम में यही करते हैं, तो एग्जाम की तैयारी के लिए हमें टाइम मिला हुआ है और उस टाइम में आपको ये भट्टी का सुंदर अवसर मिला है। तो धुंधुली की जो बहन थी मृदुली थी, धुंधुली ने खुद बच्चा नहीं पैदा किया था, क्योंकि उसको तो वो लगा कि नौ महीने सात्विक लाइफ स्टाइल कौन करेगा ये सब, फिर परचिंतन कब करूंगी मैं, उसी में लगी रहूंगी, तो सारा काम तो उसके पीछे लग, नौ महीने गर्भ धारण करना माना सारा समय तो उधर दूंगा, तो मेरी जो आदत है परचिंतन परदर्शन इसकी उसकी वहां तक पहुंचाना झगड़ा कराना वो कब करूंगी, क्योंकि उसको तो उसमें ही मजा आता था। तो मृदुली उसकी बहन ने सहयोग दिया, और मृदुली क्या थी? छोटी बहन, और छोटी बहन मतलब ये मन ही था, धंधुकारी पैदा भी हुआ और उसी ने, एक होता है देखो बुद्धि का काम क्या है, हम क्या कहते हैं पहले दिन हमको लेसन मिलता है ना ज्ञान में आते कि आत्मा, आत्मा की तीन फैकल्टीज, मन बुद्धि संस्कार, मन सोचेगा, बुद्धि मतलब मन ने जो सोचा वो बुद्धि तक पहुंचा देगा, भाई ये मेरे विचार चल रहे हैं अब आप स्टैंप लगाओ क्योंकि इसको प्रैक्टिकल करना है। हम भी यही करते ना, हमको बहुत समझो कुछ काम दिया गया है, भैया फलाना फलाना यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा करना, आर्किटेक्चर को कहते हैं कि नक्शा बना के दो, तो दो तीन चार बना के दे देता है, फाइनल हमको करना है ना कि इसमें से कौन सा एक, ऐसे मन तो बहुत सारे विचार आते हैं वो सारा बुद्धि माँ को दे देता है, बताओ मम्मी इसमें से क्या करना है, लेकिन मम्मी को जितनी अक्ल होगी उसी आधार से तो बोलेगी। सपोज मैं आपको कहूं पांच और पांच कितने होते हैं, पांच और पांच दस होते हैं ग्यारह होते हैं, दस होते हैं कि ग्यारह होते हैं, ग्यारह होते हैं दस होते हैं, फाइनल बोलो, दस होते हैं। मैं कहती नहीं ग्यारह होते हैं, तो आप क्या कहेंगे बहन जी? रॉन्ग है, कहेंगे ना, आपका आधार क्या है मुझे रॉन्ग बोलने का? आपको भी पहले पढ़ाया गया है, तो ऐसे ही आप करेक्ट किस आधार से कर रहे, आपके पास जो उपलब्ध ज्ञान है, ऐसे ही बुद्धि माँ जिसको बच्चे को गाइड करना, लेकिन उसके पास ही इनकरेक्ट नॉलेज है, तो मन को क्या गाइड करेगी, वो मन को क्या गाइड करेगी, रॉन्ग दिखाएगी ना रास्ता, तो उस मन ने। और फिर कई बार आपने देखा होगा, क्योंकि फिर मन क्या करता है, मन बार बार उसके सामने ओवरलोड हो जाता है ना, मन के पास कितने विचार आते दिन भर में, सुना है ना हजारों की संख्या में, सुनाते हैं ना लेसन्स जब कराते हैं हजारों की संख्या में, अब ये सारा लोड किसके पास जा रहा है, ओवरलोड नहीं हो रही है, थकेगी या नहीं होगी, तो शक्ति कम होगी या नहीं होगी, तो थक गई है, शक्तिहीन हो गई है, ऐसे में मन उस पर भारी हो जाता है, ऐसे में मन भारी पड़ता है बुद्धि के, और वो जो काम बुद्धि को करना था निर्णय देने का, मन उसको निर्णय देता है ऐसा करो, तब का मृदुली ने कहा ऐसा करो, उसने मान लिया, ये मन ही मृदुली का रूप लिया और मन ही बाद में धुंधुकारी का रूप लिया। तो मन हावी हो जा रहा है किस पे, बुद्धि पर, तो इसलिए ज्ञान को बहुत सुने तो जरूर पर उसको घोटना मेरा काम है, सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, गाय कितनी भी पाल लो बछड़ा नहीं देगी वो, खुद को ही घोटना है ज्ञान को, और फिर बताते हैं कि आत्मदेव जो बच्चे की तलाश में था, फल लेकर आया, उसको योगनिष्ठ सन्यासी ने पहले कह दिया था कि 7 जन्म तक तो, और इसलिए बहुत अच्छी बात है तो बच्चे की इसमें जा मत, तो अभी से अपनी तपस्या में लग जा, इसको भाग्य समझ, नहीं तो सारा समय उसमें चला जाएगा। तब का नहीं, मुझे ज्ञान मत सुनाओ, मुझे तो बच्चा चाहिए। वही आत्मदेव जो बच्चे की तलाश में वो सब किया, आज दुखी हो गया धुंधुकारी को पाके। मतलब आत्मा अब ऐसे मन से परेशान हो गई है। हम यही कहते ना, यही कहते ना, भाई जी क्या करूं, मेरे मन में इतने पर ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, इसको रोक नहीं पाता हूं मैं। तो वो परेशान आत्मदेव होके, इस धुंधुकारी ने मन ने इतना सताया पिता को, पिता की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, मतलब खत्म कर डाली, अर्थात जो कुछ थोड़ी बहुत आत्मा में शक्ति थी वो भी ड्रेन हो गई। तो ड्रेन हो गई तो उस समय, हाँ हमारी बहनें ज्ञान सुनाती है ना सबको, तो क्या होता है, बाबा ने भी कहा हुआ है आप अपना काम करते चलो, वो जब उनके जीवन में परिस्थिति आएगी ना तब याद करेंगे, उस बहन ने मुझे ज्ञान दिया था, उस समय वो काम याद आता है। ऐसे ही आत्मदेव को उस समय याद आया, सच में मुझे उस योगनिष्ठ सन्यासी ने कहा था बच्चे की चाहना में मत जा, और उस समय उसको वैराग्य जागता है। उस मन जब इतना ज्यादा परेशान करता है, और तब कहा कि गाय को फल खिलाया तो गोकर्ण पैदा हुआ, गोकर्ण मतलब क्या, गो माना इंद्रिय, तो कर्ण रूपी इंद्रिय से जो ज्ञान सुना था उस समय जागृत हुआ कि सच कहा था उसने, मतलब अंतरात्मा ने, विवेक ने मुझे सच कहा था कि तुम क्या करो, बाह्य दुनिया से दूर अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर जगत में आ जाओ। और तब वो अंतर्मुखी ज्यादा हुआ, अर्थात मन और बुद्धि से अपना ध्यान हटा दिया, अर्थात आत्म केंद्रित किया। और फिर ये माँ बेटे रह गए घर में, पिता तो चला गया, मतलब अंतर्मुखी हो गया। अब इन दोनों की माँ को ज्यादा परेशान करने लग गया, अभी माना बुद्धि को, मन बहुत परेशान कर रहा है अभी, तो बुद्धि भी आखिर थक के, उसमें कहानी में आता है कुएं में खत्म हो गई। और कुएं में खत्म, इसका अर्थ क्या है, हम क्या बताते हैं, संस्कार कैसे बनते हैं, मन बार बार जिस, हम जो कार्य बार बार करते हैं वो एक समय के बाद संस्कार, और जो चीज संस्कार बन गई का मतलब क्या होता है, अब संस्कार बन जाने के बाद अब वो चीज जब सामने आएगी मन संकल्प नहीं उठाएगा, और जब मन संकल्प नहीं उठाएगा तो बुद्धि का तो रोल खत्म। ये है कि बुद्धि कुएं में कूद गई कि बुद्धि का रोल ही खत्म कर डाला। इतने बाह्य जगत के इंद्रिय सुखों वाले संस्कार, पर चिंतन पर दर्शन पर मत वाले संस्कार, रोकी जड़े इतनी गहरी हो गई कि बुद्धि का रोल ही खत्म। और तब मन पूरी तरह से इंद्रियों के जाल में फंस गया। उसको बताया कि 5 वेश्याएं, फिर मां भी चली गई तो घर में हो गया अकेला, तो घर में ही लेके आया वेश्याओं को, बोला उसने, पहले तो कम से कम बाहर जाके, नहीं ऐसे होता है, बोलते हैं ना कि घर में नहीं पीता हूं बाहर पीता हूं, घर में नहीं खाता हूं बाहर खाता हूं, क्योंकि घर में बाकी लोगों को पसंद नहीं, लेकिन जिनको पसंद ये भी वो है ही नहीं घर में, तो घर तो मेरा ही राज्य है अभी। अब बुद्धि तो कुछ बोलती ही नहीं है, तो पहले तो फिर भी था कि ये बातें पहले बुद्धि के सामने रखनी है, बुद्धि स्टैंप लगाए तब आगे बढ़ूं, अभी तो रोल ही नहीं है, मेरा ही राज्य है। तो इंद्रिय सुखों में डूब गया, तो इंद्रिय सुखों में जब डूबे, आसक्ति में पड़े, तो इंद्रियों ने भी जवाब दे दिया। उसमें आता है कि वेश्याओं ने उसको ही खत्म कर दिया। तो आज भी हम क्या देखते हैं, कितने सारे किस्से सुनने में आते, मोबाइल सारा दिन पड़े रहे, इंटरनेट, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, जिस मोबाइल के नाम पर, जिस खान पान के नाम पर, जिस पार्टियों के नाम पर सारा समय उसमें लगे रहे, मशगूल रहे, आज उन्हीं बातों के कारण मन में डिप्रेशन है, आत्महत्या करने का ख्याल आ रहा है। ये है कि फिर वेश्याओं ने ही उसको खत्म कर दिया, मन भी आत्महत्या तक आ गया। और तब आत्महत्या करना मतलब प्रेत, उसमें बताते फिर वो प्रेत बन गया। और ऐसे समय पर उसके भाई की, अभी वो भाई हो गया ना गोकर्ण, तो उसका विवेक, तो उसको भाई की याद आती है, भाई की याद आती है ना, और उसको लगता है अभी भाई मतलब ज्ञान सुनकर ही अभी कल्याण होगा। अब सब कुछ कर लिया, बस ये जो रह गया था, तो मतलब वो रियलाइजेशन आती है उसको कि ज्ञान ही एकमात्र उपाय है जीवन में सच्चे सुख शांति को अनुभव करने का। तब वो प्रेत रूप में बताते अपने भाई के पास आता है, गोकर्ण के पास। वो भाई तो उसके नाम पर, जब उसको पता चला उस भाई को कि वो मर गया है, वो भी तो वो तो ज्ञानी था, तो उसका गया में श्राद्ध कर लिया। और ये जब घर में आया, उस कहानी में ऐसे आता है, तो प्रेत के रूप में उसके सामने खड़ा है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, उसने मंत्र छिड़क के, जल छिड़क के उसको सामने आया। और सामने आया तो फिर से बात की, बोले मैंने तो तुम्हारा श्राद्ध कर लिया था, तुम्हारे को मुक्ति नहीं। कहता है मैंने इतने इतने पाप किए, इतना इतना भ्रष्टाचार किया, वो गया श्राद्ध से नहीं होने वाला है, तुमको इसके लिए मुझे कुछ और उपाय करना पड़ेगा। तब कहते हैं कि भागवत सप्ताह का आयोजन किया उसके मुक्ति के लिए, और वो जो प्रेतात्मा बन चुकी थी, धुंधकारी मन, सात गांठ वाले बांस दिखाते, गन्ने का बांस रखते हैं, उसमें बैठा, कथा श्रवण किया। जैसे जैसे एक दिन का कथा श्रवण करता था, बांस की एक गांठ फूटती थी, दूसरे दिन दूसरी, ऐसे सातवें दिन में सात गांठें फूटी। और वो धुंधकारी जो प्रेत के रूप में था, वो गोल्डन चमकता हुआ दिवात्मा के रूप में सामने आया, जय जयकार हुई। ये सात गांठें क्या है, ये बांस क्या है, बांस क्या है, ये शरीर, शरीर में ही तो आत्मा बैठेगी, और किधर बैठेगी। हाँ, और कहते हैं ये जो बिल्लस होती है ना, ये जो बिल्लस, ये और ये जो दूरी, ये हर एक का शरीर जो होता है ना, उसकी लंबाई सात बिल्लस होती है, हर एक की अपनी अपनी बिल्लस की वो होती है लंबाई, है ना, छोटे बड़े हाथ। तो हमने सचमुच करेक्ट ऐसे देखा, स्केल में नापा ऐसे, तो मेरी बिल्लस 9 इंच बैठती थी, और वैसे मेरी हाइट अगर पूछे तो 5.2 होती है। तो मैंने कहा देखो बराबर आता है क्या, सचमुच मेरी सात बिल्लस और मेरी हाइट बराबर। और उसमें सात गांठें क्या थी कि पांच इंद्रियां और मन और बुद्धि, इन सातों ने मिलकर जो ओरिजिनल सात संस्कार थे हमारे, जिनका रूप बिगाड़ा। शांति से हम कहां आए, अशांति में, सुख से हम कहां आए, दुख में, शक्ति से हम कहां पहुंच गए, अशक्ति में आ गए, कमजोरी में, ज्ञान से हम कहां आ गए, मतलब क्या हुआ, गांठें पड़ी ना, गांठें पड़ी ना, जो वाइब्रेटिंग पैटर्न है उसको बिगाड़ा। वाइब्रेटिंग पैटर्न था शांति क्रिएट करने वाला, लेकिन उसको बिगाड़ा। तो वो अभी वही आवाज क्या दे रहा है, सुना होगा ना कई बार कि कैसेट बज रही है लेकिन बैटरी डाउन हो रही है, वो सुरीला संगीत किसमें बदल जाता है, बदल जाता है, मतलब क्या हुआ, उसमें वाइब्रेटिंग पैटर्न बिगड़ गया। उसको ही तो विकृति बोलते, उसको ही तो विकार बोलते हैं। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब क्या, विकार ही तो है ना, इसको ही गांठे कहा। तो पुनः फिर कहा कि मन लगाकर, मना रियलाइजेशन के साथ, पूरा रियलाइजेशन हुआ, पूरा मन में प्रायश्चित भाव जागा कि मैंने जो कुछ किया आज तक जीवन में, इतना परचिंतन परदर्शन, न जाने किसको दुखी किया है, किसका लूटा है, किसका क्या किया है, आज उसके कारण मेरी ये दशा है। वो रियल में अंदर में प्रायश्चित और उस ज्ञान से विवेक से फिर जुड़ जाने का वो दृढ़ संकल्प और उसके आधार से पुनः ज्ञान की पहले लेसन से अपने आप को बाबा जिसको बोरली में बार बार कहते कोर्स पूरा हुआ, अभी फोर्स का कोर्स की जरूरत है, नया कोर्स नहीं, कोर्स वही रहेगा अभी भी, लेकिन अभी फोर्स उसकी एक एक गहराई में मैं उतरूं, एक एक गहराई में उतरूं, तब कहा कि वो उसका क्या हुआ, उद्धार हुआ। तो हमें ज्ञान को खूब घोटना है, सिर्फ तोते की मुआफिक रटना नहीं है, कापियों में सिर्फ लिखना नहीं है, लाइब्रेरी सिर्फ खड़ी नहीं करना है कि मेरे पास पूरी अव्यक्त मुरलियां हैं, मेरे पास लिटरेचर में जो भी बुक छपती है सारी है, जितने भी ऑडियो कैसेट से वीडियो है कमेंट्री से सबका कलेक्शन है, इधर कितना है, इधर कितना है, तब जाके रियल अर्थ में मुक्ति होगी, तब जाके हमारे कलयुगी संस्कार। और ये कई बार हमारे मन में ये भी रहता है 63 जन्मों के संस्कार इतने जल्दी कैसे बदलेंगे, तो हम ही अपनी दृढ़ता को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अरे भाई एक जन्म की बात थोड़ी है, 63 जन्मों के संस्कार हैं, गहरे रूट्स जमाई हुई है, लेकिन अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो सिर्फ दृढ़ संकल्प नहीं, ज्ञान। कितनी बार आज हम लोग महसूस करते हैं टीवी के माध्यम से आज संसार ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को सुन रहा है, वो अभी ज्ञानी नहीं बने हैं, ब्राह्मण वाली जीवन शैली नहीं अपना रहे हैं, सिर्फ टीवी के माध्यम से सुन सुन कर रियलाइज कर रहे हैं, और जो वर्षों के उनाने के रिलेशनशिप में गांठें पड़ी थी तुरंत जाके फोन करते हैं क्षमा करना और वापस वैसे के वैसे, ज्ञानी जीवन भी उन्होंने अपनाया नहीं है, सिर्फ ज्ञान का बार बार श्रवण कर रहे हैं और वो उनके जीवन में रियलाइजेशन ला रहा है, और फोन करते हैं हमने फलानी बात सुनी और हमें रियलाइजेशन हुआ मैं जीवन में कितना कुछ गलत कर रहा था। कई बताते हैं कि मैंने अपने भाई संपत्ति को लेकर कुछ हो गया था, मैंने अपने भाई पर ही मुकदमा दायर कर दिया था, बरसों हो गए उस केस को लड़ते लड़ते, लेकिन आज जो मैंने बात सुनी ना टीवी में मुझे इतना प्रायश्चित हुआ, मैं तुरंत क्षमा मांग के उस केस को वापस क्या करने वाला हूँ, बंद करने वाला हूँ। इस केस में इस करोड़ों की संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, मेरे जीवन का सुख चैन हराम हो गया है, खाने को सब कुछ है पर खा नहीं पा रहा हूँ, सोने के लिए गद्दे हैं पर सो नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँगा ऐसा केस लड़कर मैं। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का श्रवण पूरे मनोयोग से करके जब घर बैठे लोग परिवर्तन कर रहे हैं ना, ऐसे किसे, आप लोगों भी सुने होंगे ना, आप लोगों को भी लोग फोन करते होंगे, तो फिर हम तो ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं, डायरेक्ट परमात्मा की पालना ले रहे हैं, डायरेक्ट उसके चरित्र भूमि वरदानी भूमि में आकर उनकी चार धामों की यात्रा कर रहे हैं, यहाँ के वाइब्रेशन से अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं, तो हमें तो कितनी रियलाइजेशन होनी चाहिए। और जो कुछ भी अंदर झांकने के बाद पता चला ये हमसे गलत गलत हुआ है, हम कितना तुरंत दृढ़ता लाके उन सबको वाइंड अप कर लेना चाहिए, और हमें सत मार्ग पर जो स्वदर्शन बाबा कहते हैं, जो शुभ चिंतन कहते हैं, जो शुभ वृत्ति कहते हैं, शुभ शुभ की ओर, जो पहले पर की ओर जा रहा था अब वो सारा किस में बदल जाए, शुभ 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 चिंतन करूं, शुभ दर्शन करूं, श्री मत पर चलूं, शुभ चिंतक बनूं, शुभ वृत्ति रखूं, तो अपने आप मेरा भी कल्याण और सर्व का भी कल्याण। तब कहा कि तुंग भद्रा नदी के किनारे, तो तुंग माना हाईएस्ट, भद्रा माना कल्याण, तो अगर हाईएस्ट कल्याण जीवन का होना है तो इस नदी के किनारे पर आकर बैठने से ही होने वाला है। और इसलिए आत्म केंद्रित हो, परमात्म केंद्रित हो, तब जाके योग लगेगा, तब जाके एम्पावर होंगे और वर्षों के संस्कार यूं मिनटों में गल जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, विकारों को भस्मीभूत करना है। वो जितना पावरफुल कनेक्शन होगा, उतनी वो पावरफुल रेस उस हमारे कलयुगी संस्कारों रूपी बीजों को क्या कर देंगे, गरम कर देंगे। गरम होने के बाद बीज फलीभूत नहीं होता है। तो ये है मैं ब्राह्मण आत्मदेव, इतना रियलाइजेशन करके इस भट्टी से जाना है। इतना सब कुछ जो मेरे काम का नहीं था, वो सब यहाँ बाबा के पास, बाबा के घर में, बाबा के कमरे में जो बॉक्सेस रखे हैं, सब लिख लिख कर सब कुछ स्वाहा करके, ये भी भट्टी रूपी यज्ञ ही कहेंगे। तो ये भट्टी रूपी यज्ञ का आज अंतिम दिन है ना, शाम को अंतिम सत्र है। तो थोड़ा बहुत जो भी बाकी है, शाम की भी और एक क्लास मिलेगी, उसमें भी कुछ रियलाइजेशन होगी, वो फिर अंतिम आहुति डालकर ही यज्ञ पूरा होता है, तभी भट्टी हमारी पूरी होगी। अच्छा, ओम शांति।